أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. چلیے, اللہ نے آپ لوگوں کو مجھے پھر موقع دیا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے مواقع ہمارے حق میں حجت بنائے. تو آئیے بڑی محبت سے, بڑے پیار سے نماز نبوی کا ڈے نمبر 4 شروع کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ, ہم نے طہارت کے ابواب میں سے یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی موجودگی میں وضو نہیں ہوتا, اور جتنا زیادہ آپ اور میں اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھیں گے اتنا عبادت میں دل لگے گا. پچھلے سیشن میں ہم نے کچھ پرسنل معاملات کو بھی دیکھا, کیونکہ دیکھیے شریعت انسان کی انفرادی زندگی کی اصلاح کے لیے بھی ہے اور اس کی اجتماعی اصلاح کے لیے. ہر انسان اپنے انسان ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نجاستوں کا شکار ہے, اور یہ نجاستیں انسان کو لگی ہوئی ہیں, چاہے کوئی بادشاہ ہے یا کوئی دوسرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایسا خوبصورت محسن انسانیت ہمارے بیچ میں بھیجا کہ یہ باتیں تو کبھی کوئی کسی سے نہ کہے نہ پوچھے, پسند بھی نہ کرے. لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں کیسے انگلی پکڑ کر سکھایا کیا ہوتا اگر ہمیں یہ باتیں نہ بتائی جاتی, اور وہاں جا کر پتہ چل جاتا کہ اوہو یہ غلطیاں تھیں وہ غلطیاں تھیں. تو آج جس موضوع سے ہم بات شروع کریں گے وہ پچھلے ریکیپ کو دیکھیں تو ہم نے پچھلے میں سیکھا تھا کہ بچوں کو کیسے طہارت کی باتیں بتانی ہیں, نمازوں کو اول وقت پہ پڑھنے کی بات اور خواہش تھی ہماری, اور دوسری بات یہ کہ خشوع اور خضوع بھی رکھنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر چھوٹے بچے کے پیشاب کے بارے میں احکامات ہم نے دیکھے, حائضہ کے کپڑے کون سے پاک ہیں کون سے نہیں, بلی کا جھوٹا کیسے, اگر کتا کسی برتن کو منہ ڈال دے تو کیا ہے, اور اسی طرح سے گندگی لگ جائے جوتوں کو تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے صفائی کا. پھر اسی میں ہم نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے گریز کرنے کے بارے میں بھی پڑھا تھا, اور پھر سکن یعنی لیدر وہ درندوں کی ہو تو کیا احکامات ہیں, اور سنیکس وغیرہ یا پھر حلال جانور ہیں لیکن مردار ہیں یعنی اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو اس کی کھال کے بارے میں کیا حکم ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کچھ ایسے مسائل دیکھے تھے جو شادی شدہ زندگی سے متعلق ہیں, اور ہر انسان کی زندگی میں یہ لازمی چیزیں ہیں, شرم ہے شرم نہیں, شریعت نے ہر چیز کھول کے رکھی. تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب غسل واجب ہو جاتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں, اور پھر جب غسل واجب ہو جائے تو اب آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جنابت اور حیض سے متعلقہ احکامات, کہ جب ایک انسان اس قسم کی کیفیت میں, اور خاص طور پہ جنبی عورت کے بالوں کا مسئلہ, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ معلوم ہونی لازمی ہوتی ہیں, تو بہت ہی پرسنل چیزوں میں سے ایک چیز کہ جب حالات ایسے بن جائیں کہ نماز پڑھ نہیں سکتے جب تک کہ غسل نہ کر لیا جائے, اور اس میں بال بھی لمبے ہیں اور بال دھوئیں کیسے, تو کچھ اس قسم کے سارے معاملات کو ہم نے انشاءاللہ تعالی اس میں دیکھنا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے جنبی عورت کے بالوں کا مسئلہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول, میں اپنے سر کے بال مینڈھیوں کی شکل میں مضبوطی سے باندھ لیتی ہوں, کیا میں نے غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں کھولنا ضروری نہیں, تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ 3 لب پانی اپنے سر پر ڈالو, پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لو تو تم پاک ہو جاؤ گی. چلیے ایک حدیث یہ ہوئی, یہ حدیث صحیح مسلم میں 330 نمبر کی حدیث ہے. دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہے, کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے تھے یا حکم دیتے ہیں. آپ فرمانے لگی, ابن عمر پر تعجب ہے, انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا کہ وہ عورتوں کو غسل کے وقت سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں, وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے, اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی. अल्लाह अकबर कबीरा। तो क्या पता चला, हज़रत आयशा जो महातुल मोमिनीन में हैं, उम्मत की माँ हैं, यानी औरतों और मर्दों के लिए वो एक माँ की हैसियत रखती हैं, तो वो इस बात की खातिर कि कहीं ख़वातीन इस मुशक्क़त में पड़ने के डर से अपने शोहरों को नाराज़ न करने लग जाएं या फिर अपनी नमाज़ें ना छोड़ने लगें, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात तो नहीं है जो आपने कही। और ये रिवायत जो है ये सही मुस्लिम की रिवायत है, अल हईस हदीस नंबर 331 और इब्ने खुजैमा में 247 भी यही हदीस है। चलिए खैर, हम इसको आगे भी लेके चलते हैं, फिर आगे और देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि एक हदीस से एक बात समझ आती है दूसरी नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि इसमें एक अमल का नुक्ता क्या है कि गुस्ले जनाबत के लिए बाल खोलने की ज़रूरत नहीं, गुस्ले हैज़ के लिए बालों को खोलने की ज़रूरत होती है। मुझे यकीन है कि हमारे इंडो पाक कल्चर की बहुत सारी बहनों के लिए ये बात बहुत नई होगी। जी, जब हमने हदीस में पहली दफ़ा ये बात पढ़ी तो हमें तो लगा कि हम पता नहीं क्या पढ़ गए, लेकिन बाद में जब अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की तरफ कदम बढ़ते गए तो हमें समझ आया कि दीन दीने फितरत है। अल्लाह ताला ने शरीयत को बहुत ही सहूलत वाली रखी है। क्या मालूम हुआ कि अगर बाल मेंढियों की सूरत में मजबूती से बांधे हुए हैं तो गुस्ले जनाबत के लिए इन्हें खोलने की ज़रूरत नहीं, मगर ये हुक्म सिर्फ गुस्ले जनाबत के लिए, हैज़ के लिए नहीं। एक और रिवायत है इसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि वो हाइजा थी फरमाया, अपने बाल खोलो और गुसल करो। यानी अब ये चीज़ भी दोनों को टैली करेंगे। ये रिवायत जो भी बताई ये इब्ने माजा की रिवायत है 641। ठीक है, अब आप देखिए कि ये दोनों चीज़ों को ज़रा सा हम टैली कर लेते हैं। आप देखिए कि दीन सिर्फ आपके मेरे लिए नहीं है। जो हम बड़े महज़ब मुल्कों में रहते हैं, गर्म ठंडे पानी के इंतज़ाम है, वॉशरूम भी अटैच्ड है और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दीन जंगलों में रहने वालों के लिए भी है, गारों में रहने वाले, सहराई इलाकों में, थर में और इसी तरह छोटी-छोटी झोंपड़ियों में रहने वालों के लिए। ये एक बुनियादी असूल याद रखिएगा तो इंशाल्लाह आपको और भी प्यार आएगा अल्लाह पे। मैंने तो ये देखा है जितना कुरान और हदीस पढ़ा है अल्लाह पे बहुत प्यार आया बींग अ वुमेन, कि अल्लाह जी आपने औरतों को कितनी सहूलतें दी। अब तो ये हमारा कसूर है ना कि हमने शरीयत को उस तरह से लिया नहीं जैसा लेने का हक था। तो बात समझ लेते हैं, आम हालात में तो गुसल जब भी हो, चाहे गुसल जनाबत का है या हैज़ का है, दोनों में सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक एक एक उस गीला करना है। ठीक है, बुनियादी सी चीज़ है। गुसल के दो ही बड़े काम है। नंबर एक आपकी नीयत है, आप अपने दिल से सोच के बैठे हैं कि मैंने पाकी का गुसल करना है। ठीक है, क्योंकि नियत तो अमल का नाम नहीं, नियत तो क्या है, दिल का इरादा। और दूसरा फर्ज गुस्ल का क्या है, सर से लेकर पांव तक पानी बह जाए। बस ये आम असूल समझ लीजिए। ठीक है, अब इसमें कहीं नाखून पे नेल पॉलिश लगी है तो वो पहले हटाएंगे, बाद में हटाई तो पानी तो वहां नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह से कहीं रंग लग गया, आटा खुश्की से सूख गया, कोई भी ऐसी चीज जो रुकावट बने, कहीं कोई टेप लग गई, कभी कभी काम करते हुए ऐसी चीज़ें हो जाती है, स्कॉच टेप लग जाती है, तो आपको उसको मूव करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये असूल सी बात है। बाकी जो तरीका हम सारा सीखेंगे वो सुन्नत के मुताबिक है जो कि करना चाहिए, लेकिन ये दो चीज़ें अगर मिस हो जाएं जो शुरू में हैं तो गुसल नहीं होगा। फिर बोल देती हूँ, गुसल के दो बुनियादी फ़राइज़ क्या हैं। आपकी नीयत हो कि आप इस नीयत से गुसल कर रहे हैं, गुसल कर रहे हैं। वैसे तो आप देखें ना, कोई पूरा स्विमिंग पूल में भी डूब जाए, गिर जाए, अंदर जाके स्विमिंग करे, लेकिन नियत नहीं तो गुसल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा पूरे जिस्म पर पानी बहना, बस ना इसमें साबुन लगाना है, ना इसमें शैम्पू है और बाकी। लेकिन इसकी सुन्नतें बहुत सारी हैं, जिसमें ऑफकोर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है जो कि आप करते थे, और इंशाल्लाह हम इसको भी आगे हदीस की रोशनी में देख लेंगे। लेकिन जो यहाँ इशू है बालों का, इसको समझिएगा। आम हालात में तो ऐसा ही है, लेकिन हैज़ महीने में एक बार होता है और अमूमन दिन भी पता होते हैं। कोई ऐसी शर्मिंदगी वाली बात भी नहीं, क्योंकि एक फिज़िकल फिनोमिनन है। जैसे दिन में इंसान दो तीन बार फारिग होता है कज़ाए हाजत से, बच्चा भी होता है बड़ा भी, यानी औरफन मारूफ है। इसके बरक्स अब दूसरी तरफ गुस्ले जनाबत जो ख़ास तौर पर शादी शुदा जोड़ों के लिए रखा गया, उसमें नंबर एक यह है कि वो ज़रूरी नहीं कि ज़ाहिर है कि उसका वक्त कोई ऐसा तो नहीं कि वंस अ मंथ, कभी किसी वक्त भी ये ताल्लुक़ कायम हो सकता है। फिर दूसरी बात है, हर जगह सहूलत नहीं होती। तीसरी बात जो है कि इंसान इतनी मुशक्कत में पड़ जाए कि जिसकी वजह से या तो शौहर बीवी के ताल्लुक में कोई मसला आने लगे, और दूसरी तरफ ये है कि नमाज ही नहीं पढ़ रहे क्योंकि अब किसी को क्या बताएं। तो इसके लिए तरीका क्या है कि आम हालात में तो ऐसा ही है, मेरा लगे हमारे 90% लोग माशाल्लाह उनके लिए कोई बिग इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशनल लोग, बस आप देखिए, आपने पठान लोगों को देखा होगा, उनकी खवातीन बहुत बारीक बारीक मेंढियाँ बांधती हैं ना, बाल बहुत कर्ली होते हैं, फिर उन बालों को समेटने के लिए। फिर इसी तरह से कुछ और भी लोग हो सकते हैं, घुंघरियाले बाल हैं, अफ्रीकी लोगों को आप देखिए कि उनके सर पे बहुत बाल है। अब अगर वो हर दफा बाल खोले मीडिया और फिर गुसल करें तो एक बहुत बड़ा मसला होगा। ऐसी वक्त में जब कोई मजबूरी है या कुछ है, तो ऐसी औरत सर पर जो खाल है ना, जिसको स्कल कहते हैं, खोपड़ी, उसको पूरा गीला कर ले हाथ में, जैसे थोड़ा सा पानी लेके, जैसे हमारे कल्चर में अमूमन तेल लगाया जाता है सर में, तो पानी बुख में लेकर, छिल्लू में लेकर, उसको सर की जड़ों के अंदर खूब अच्छी तरह लगा दे। अब ऐसी औरत, या फिर एक औरत उसके बाल बहुत लंबे हैं, तो वो सिर्फ अपने जड़ों को गीला कर ले और बाकी बालों को खुश्क रहने दे तो कोई हर्ज की बात नहीं। ये है वो बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने शायद पहले ना सुनी हो, उम्मीद है कभी ऐसा होता है। और अगर आपका माशाल्लाह इल्मी घराना है, तालीम ताल्लुम, और सबसे बड़ी बात आपने अहादीस से ये बात खोल कर देख ली, तो फिर तो कोई शक नहीं रहता। क्या आपको अल्लाह ताला पे प्यार आया? कितना ख्याल करते हैं अल्लाह ताला। आप देखिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम, पुराने दौर में चार चार फैमिलीज, एक वॉशरूम, पहले घरों के बाहर होते थे वॉशरूम, खुले सहन से गुजर कर नलकों में से पानी लेना, अल्लाह ताला ने कितनी सहूलत कर दी इसमें, ठीक है। अब आज के दौर में ऐसा है तो सिंक में सर डालकर हल्का सा बंदा उसको अगर गीला कर ले और उसके बाद पूरे जिस्म पे पानी डाल दे, तो बहरहाल एक बुनियादी फर्क बताया गया। ये भी नहीं कि जरूर ऐसा ही करें, ये एक रुख्सत है हालात के मुताबिक। जब कोई इससे फायदा उठाना चाहे तो फायदा उठाए और अल्लाह का शुक्र अदा करे। वो जिसको कहते ना कि अल्हम्दुलिल्लाह ही बिनेमतिल इस्लाम, ए अल्लाह इस्लाम की नेमत पे तेरा शुक्र है, ठीक है।